SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
अमित जी, सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत है.
थैंक यू भव्य, थैंक यू सो मच
जी. तो हाउ आर यू?
मैं बढ़िया हूँ. तीन चार दिन हो गए हैं सेटल हुए हुए, यहाँ पे भी सिडनी में है एंड कल निकलेंगे. पर्थ से शुरू हो रहा है और अभी दो वीकेंड्स में आई थिंक नौ शोज हैं, तो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग.
जी बिल्कुल. तो अमित जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आई थिंक यू आर वन ऑफ दोस कॉमेडियंस जिन्होंने ये पूरा सिलसिला शुरू किया था, जहां तक मुझे याद है कि आपने शुरुआत की थी और उसके बाद लोगों को पता चला कि अच्छा, सिंगर्स के अलावा आप अपनी कॉमेडी की आर्ट फॉर्म भी इंटरनेशनली लेके आ सकते हैं.
हाँ, सो मेरा फोर्थ टूर है ऑस्ट्रेलिया का. तो 2017 से आना शुरू करा था, तो यस, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम. सो अभी नया शो लेके आया हूँ यहाँ पे. हमारे जमाने में चौथी बार है मेरा जो ऑस्ट्रेलिया टूर हो रहा है. तो नए जोक्स हैं, नई स्टोरीज हैं, जो अभी कहीं यूट्यूब पे भी नहीं है, कहीं पर भी रिलीज नहीं है. मेलबर्न, एडलेड, पर्थ, सिडनी और कैनबेरा और ब्रिस्बेन, कुछ ही टिकट्स बची हैं. कुछ जगह हम दो दो शोज डाल के बैठे हैं. तो पहला शो सोल्ड आउट था, तो फैमिली के साथ आ सकते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ शो वेयर यू हैव टू बी वरीड कि कौन क्या सुन रहा है. But I always look forward to Australia, so it's been fun.
आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, फिर आपने MBA किया, वो भी दिल्ली से. तो बहुत ही एकेडमिक बैकग्राउंड आपका रहा है. फिर आपने कई सालों तक IT इंडस्ट्री में काम किया है. तो इन सब के बीच कॉमेडी की शुरुआत कैसे हुई?
तो काफी मतलब वो बाय चांस वाला काम हुआ है कॉमेडी का, क्योंकि मैं आई थिंक 35-36 साल का था जब मैंने पहली बार कॉमेडी करी है. और वो भी सिर्फ ये था कि मैं अपना बिजनेस रन कर रहा था एंड ये तो एज अ हॉबी शुरू किया था करना, कि तब नया नया स्टैंड अप आया था इंडिया में और मुझे लगा कि हाँ, ये ट्राई करते हैं. कि रोज की भाग दौड़ से जैसे आदमी तंग आ जाता, तो आदमी कहता है कि चलो शाम को कहीं गए कोई अपना एक कोई हॉबी परस्यू करने के लिए. तो वो था मेरे लिए कॉमेडी. बट फॉर्चुनेटली शायद टाइम अच्छा था और लोगों को मेरी कॉमेडी, मेरी राइटिंग पसंद आनी शुरू हो गई. तो और यूट्यूब पे रिलीज होने शुरू हो गए जब वीडियोस, तो उसकी वजह से एकदम से जो एक्सेप्टेंस मिला वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज रहा. तो कोई ऐसा प्लान नहीं था लाइफ में कि कॉमेडी करनी है या करियर बनाना है. हम तो अपने मतलब बिजनेस रन कर रहे थे और प्रॉपर अच्छा भला चल रहा था. बट मतलब जो किस्मत होती है वही हो जाता. तो
जी, तो सर, जैसा आपने बताया कि आपने तो शुरुआत ही 35-36 की उम्र में करी थी, जो कि एक ऐसा उम्र आ जाती है जहां लोग ऑलरेडी समझ चुके होते हैं कि अच्छा, अब यही लाइफ में आगे करना है. और एट द सेम टाइम काफी सारे कॉमेडियंस जो अब आ रहे हैं वो बहुत ही जल्द बात कर चुके होते हैं. तो by the age of 25-26 they are already known. आपने काफी लेट शुरुआत करी, पर फिर आप टिके रहे इस गेम में. तो मुझे ये जानना है कि जब आप थोड़ा लेट शुरू करते हैं तो क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, या वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अरे यार, यही करना था मैं पहले, थोड़ा अगर हो जाता तो?
नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि काफी एडवांटेजेस हैं कि मैंने लेट शुरू करा, क्योंकि फिर आपके पास जो एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने के लाइफ के, वो शायद थोड़े ज्यादा हैं कि जब आप 35 थे. तो मैंने जब शुरू ही करी थी तब भी मेरे दो बच्चे थे, शादीशुदा था, तो जो कंटेंट या जो एक्सपीरियंसेस जो शेयर करने की, वो जो आपकी प्लेटर है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी होती है. तो मुझे तो उसका एडवांटेज ही लगा है. यंग और ओल्ड में मेरे ख्याल में फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यादा आपकी अपनी एनर्जी है कि हाँ, आप कितनी एनर्जी और कितने शौक से घुसते हैं, तो ये भी हो सकता है कि 50 साल की उम्र में भी आप में बहुत एनर्जी हो और 20 साल में आलस हो, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उम्र से, मुझे लगता है। यंगर यू आर इन द प्रोफेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
बिल्कुल। तो सर जैसा आपने बताया कि आपके एक्सपीरियंसेस और जिस तरह का कंटेंट आप सामने रखते हैं, तो इसे क्लीन
हाँ
कॉमेडी
जी,
भी कहा जाता है, जिसके लिए आप बहुत जाने जाते हैं कि लोगों के मन में ये चीज आजकल है कि जब तक आप गाली नहीं देते हो, क्योंकि वोक कल्चर भी है, तो शायद लोग पसंद नहीं करते हैं उस चीज को, पर आपने एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव सामने रखा है कि ये भी फनी हो सकता है और इक्वली फनी हो सकता है। तो क्या ये आपका कॉन्शियस डिसीजन था, या ये ओवर द टाइम आपको रियलाइज हुआ कि जिस तरह की ऑडियंस आप केटर करना चाह रहे हैं, उन्हें शायद ये चीज इतनी ना भाए?
नहीं, मेरा कॉन्शियस डिसीजन ही था। पहले 1-1.5 साल जब मैंने शुरू करी थी, तब मैंने सब कुछ एक्सपेरिमेंट करा है, लैंग्वेज भी थोड़ी कलरफुल रही है। बट उसके बाद मुझे यही था कि मैं ऐसा कंटेंट करना चाहता था कि मुझे था कि जो अगर क्राउड में बच्चे आए हैं वो भी देख सकें और पेरेंट्स आए हैं वो भी देख सकें, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सेटल्ड ज्वाइंट फैमिली से आता था, जहां पे आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता था कि बच्चों के साथ क्या बात कर रहे हो या बड़ों के साथ। तो मुझे लगता था कि अगर मेरे शो पे मेरे बच्चे आए तो उनको देखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या मुझे कभी बच्चे अगर ऑडियंस में दिखें, क्योंकि कई बार क्या होता था कि आप शो कर रहे हैं और ऑडियंस में बच्चे हैं, तो सडनली बींग अ फादर योर सेल्फ, जब आप खुद ही बाप हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, ये बात मैं नहीं बोल सकता बच्चों के सामने। तो मुझे लगा कि मुझे ये टेंशन हर बार रहेगी, अदरवाइज अगर मैं मटेरियल ने लैंग्वेज यूज करूंगा ऐसी, तो मैंने कॉन्शियसली यही कहा कि मैं वही लिखूंगा, चाहे मुझे ज्यादा टाइम लगे, पर मैं वही लिखूंगा जो मैं सबके सामने कर सकूं, जो मेरी भी सारी फैमिली देख सके। तो वो वही कोशिश रही है अभी तक।
जी, तो सर इन दिस प्रोसेस क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि शायद इसकी वजह से कुछ ऑडियंस कट ना जाए, या उल्टा था कि बढ़ेगी?
ऐसा है कि कॉमेडी में आप कभी भी सबको नहीं केटर कर सकते, तो ये बात शायद थोड़ी जल्दी समझ में आ गई मुझे भी कि सारी दुनिया किसी की भी ऑडियंस नहीं होती है। आपको पूरी ऑडियंस में से एक अपनी मुट्ठी ढूंढनी होती है कि कौन से मेरे लोग हैं, ठीक है, वो आपके कंटेंट के हिसाब से आ जाएंगे। तो अगर आप सबको केटर करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक सेइंग है ना कि इफ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी देन यू शुड सेल आइसक्रीम, वही। वही कोशिश रहती है कि मैं अपनी कहानी लेकर जा रहा हूँ स्टेज पे, जिनको पसंद आएगी वो सुनेंगे, नहीं तो बाकियों के लिए बहुत सारे और कमेडियंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं।
सर आप इस प्रोफेशन में इतने लंबे टाइम से रहे हैं, आपने खुद अपने सामने इतने सारे कॉमेडियंस को आते हुए जाते हुए खिलते हुए देखा है, तो इनमें से खूब सारे कॉमेडियंस अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भी आए हैं, उन्होंने अपना टैलेंट ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा है। तो आई नो थोड़ा बायस्ड हो जाएगा सवाल, पर आपके मनपसंद कौन है इनमें से, जिनका काम देख के आप भी कहीं ना कहीं सीखते होंगे कुछ नया?
मैं एक्चुअली काफी लोगों से सीखता हूँ। जैसे जाकिर का स्टोरी टेलिंग बहुत स्ट्रांग है, बस्सी का स्टोरी टेलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो इनके मुझे वो स्किल्स ज्यादा पसंद आते हैं। अभिषेक उपमन्यु के पंचेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो एक वो मिली जुली इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं काफी लाइव शो देखता हूँ, तो अगर मुझे नाम लेने हैं तो जाकिर है, बसी है, गौरव गुप्ता बहुत अच्छा लगता है, गौरव कपूर बहुत अच्छा लगता है, और अभिषेक उपन्यास।
तो सर नॉट टू मेक यू फील एनी ओल्ड, बट मुझे ये जानना है कि क्योंकि नई
हाँ जी,
जनरेशन भी है और हम हर दिन देखते हैं कि
हाँ जी,
कुछ नया टर्म आ गया है,
हाँ
हुकअप कल्चर या घोस्टिंग हो गया, तो इन इस तरह की चीजें जब आप इंस्टे कुछ लिखते हैं, तो डू यू गो टू योर किड्स फॉर इनपुट?
हाँ वो इनपुट मैं पूछना भी जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ बातों बातों में बहुत चीजें पता चलती हैं, क्योंकि मेरा जो बेटा है वही अब करीबन 20 साल का हो गया है और बेटी 18 साल की है, तो हाँ उनसे डेफिनेटली एक मैं समझ लेता हूँ कि हाँ आजकल बच्चे क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या पसंद है क्या नापसंद है, तो हाँ वो उनसे डेफिनेटली रिसर्च का फर्क पड़ जाता है।
जी, एंड सर डू दे सी यू लाइक अ सेलिब्रिटी की, क्योंकि बच्चों को तो होता होगा कि हमारे पापा हैं
ना ना, कोई
या
फर्क नहीं पड़ता उनका। हाँ, माँ बाप को इज्जत नहीं मिलती। बाहर जितनी मर्जी मिल जाए।
सर आप इतने टाइम से अब्रॉड शोज कर रहे हैं, सो डू यू लव ट्रैवलिंग और जस्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब यू हैव टू टेक दोस फ्लाइट्स एंड कम बैक एंड काफी हेक्टिक भी हो जाता होगा?
हेक्टिक होता है पर मुझे मजा आता है, ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आता है। नई नई जगह देखने को मिलती है, नए नए लोग देखने को मिलते हैं, तो मैं तो काफी इंजॉय करता हूँ। और मतलब जो काम यार हमें करने को मिल रहा है कि हम लोगों को हंसा रहे हैं और उसके हमें पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें अगर ट्रैवलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है कि हाँ आपको बार बार जेट लैग हो रहा है और वो सब, इट्स अ वेरी स्मॉल कॉस्ट टू पे फॉर व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न।
इतने साल आपने काम किया है तो इस पूरे टाइम स्पैन के दौरान क्या कभी ऐसा हुआ है, बिकॉज आई एम श्योर अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि कहाँ फंस गया मैं, बढ़िया अपना आईटी में काम करता, कभी ऐसा लगा है कि वापिस ही चले जाता मैं, एटलीस्ट मैं जूम पे बैठा होता? नहीं
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉमेडी बहुत रिवॉर्डिंग करियर है, हर
जी
सेंस में बहुत रिवॉर्डिंग करियर है, क्योंकि जब लोग आपको मैसेज करते हैं कि हम हॉस्पिटल में थे और हमने आपके शोज देखे यूट्यूब पे, उससे हम खुश रहे, थोड़े पॉजिटिव रहे, जब ऐसे मैसेजेस आते हैं, जिस तरह से जितना प्यार लोग देते हैं, जब वो लोग मिलते हैं कि कोई आप एक शहर में परफॉर्म कर रहे हैं, कोई वहां पे स्पेशली 4 घंटे ड्राइव करके आ रहा है आपका शो देखने, तो वो सब कभी आईटी में पॉसिबल नहीं था, तो मैं कभी भी नहीं सोचा कि मुझे वापस उस जिंदगी में जाना चाहिए।
सर, जैसे आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत ही ज्यादा पीपल सेंट्रिक है, जहाँ आप नए लोगों को रोज मिल रहे हैं और वो 1 घंटे के दौरान आपको एक कनेक्शन भी बिठाना है और उनका फेवरेट बन के 1 घंटे बाद आपको वहां से निकलना है इन अ वे, तो ऐसे में क्या मुश्किल होता है व्हेन यू आर योरसेल्फ पर्सनली नॉट हैविंग अ गुड डे, या आपकी लाइफ में हो सकता है उतार चढ़ाव चल रहे हो लेकिन आपका शो है तो वो चीज शो पे नहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो वो कैसा होता है?
हाँ, वो थोड़ा सा ये है कि आपको अपने आप से थोड़ी बातें करनी पड़ती हैं कभी कभी, कि कोई ऐसा चैलेंज है ऑफ स्टेज, किसी भी रीजन से है, कोई स्ट्रेस है, तो वो आपको वापस छोड़ के ही जाना पड़ता है ऑफ स्टेज। उसके लिए ये है कि हाँ, बिफोर गेटिंग ऑन स्टेज आदमी एक थोड़ा जोन में चला जाता है, यू टॉक टू योर सेल्फ कि ठीक है वो सब चल रहा है, पर अपना ये भी काम जरूरी है, क्योंकि मुझे मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ये मेरा काम है तो मुझे जाके करना है, मुझे क्या है कि अब मैं देखता हूँ कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों ने अपनी इवनिंग प्लान करी है, कईयों ने 3 3 महीने पहले की टिकट्स बुक करा रखी हैं,
जी
तो मेरी प्रॉब्लम बहुत सेकेंडरी हो जाती है उस केस में, कि जो कोई आ रहा है अगले ने 3 महीने पहले टिकट बुक कराई, 10 लोगों से बात करी दोस्तों के साथ, चल यार ये इवनिंग जाएंगे हम शो देखने जाएंगे, और मैं सिर्फ इसलिए कि आज मेरा मूड खराब है, शायद मेरी चाय में चीनी कम थी या किसी ने बदतमीजी से बात कर ली, उसके कारण मैं उनकी वो मेमोरी खराब कर दूं जिसके लिए वो इतने टाइम से वेट कर रहे थे, तो मेरा हक ही नहीं बनता मुझे लगता।
तो सर आप वैसे मेरे ख्याल से ओरिजिनली आप दिल्ली से हैं, इफ आई एम नॉट
हाँ
रॉन्ग,
जी, हाँ जी,
और काफी सालों से मुंबई में रह रहे हैं।
6 साल हो गए मुंबई में।
जी, तो सर दिल्ली बेटर है या मुंबई, क्योंकि ये सवाल आपको आज आंसर करना ही पड़ेगा।
मुंबई बेटर है, मुंबई बेटर है, अगर मुझे कहना है तो आज की डेट में मुंबई, आई डेफिनेटली लाइक मुंबई मोर। हाँ
तो सर अब बात करते हैं आपके आने वाले शो की, हमने आपके पहले के शोज भी देखे हैं और हर बार आप नए तरह का कंटेंट लेके आते हैं और वो बातें इतनी रिलेटेबल होती हैं क्योंकि शायद हर किसी के घर में सेम चीजें होती हैं पर वो ऑब्जर्व करने की क्षमता नहीं होती, और फिर जब आप सुनते हो तो आपको लगता है ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है ये छोटी मोटी नोक झोंक। ये जो आप अब नया शो लेके आ रहे हैं इसका जो टाइटल है
हाँ जी,
हमारे जमाने में, ये मुझ जैसे लोगों ने तो पता नहीं कितने सालों तक सुना है, जो जेंजी है 2000 के आगे के बॉर्न वालों ने तो ये ऑलमोस्ट हर दिन ही सुना होगा अपने पापा से या मम्मी से।
हाँ, तो ये शो प्योर नॉस्टैल्जिया बेस्ड है, क्योंकि मैं आई एम अ 70s किड्स, तो मैं सन 1975 की पैदाइश है मेरी, तो बहुत सारी चीजें जो हमारे टाइम में चेंज हो गई हैं पिछले, जैसे हम कहते हैं कि वक्त बदलता गया है, और एक्चुअली टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ज्यादा बदला है पिछले 30 40 सालों में, तो ये स्टोरी बेसिकली वही है कि कितना वक्त बदल गया है और कितनी हमारी जिंदगी बदल गई है और उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या बेटर हो रहा है, तो उसी पर ही है ये पूरा शो।
सर मैं जानना चाहूंगी आपका कोई ऐसा शो रहा हो जो आप जो बहुत ही यादगार हो, या जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको वो लंबे वक्त तक याद रहा। बिकॉज आई थिंक आपने कॉर्पोरेट में तो परफॉर्म किया ही है, पर आपने बहुत अलग जगहों पर भी अपनी परफॉर्मेंस दी है, जैसे तिहाड़ जेल में आपने परफॉर्म किया था।
हाँ, तो तिहाड़ जेल बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मतलब एक तो उन लोगों को हंसाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो तो सजा याफ्ता मुजरिम है, तो मुझे तो लॉजिक भी नहीं लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि इनको हंसाना क्यों, हमने इनको तो सजा मिली हुई है। तो वो काफी चैलेंजिंग शो रहा था उस सेंस में, क्योंकि हमें काफी देर बैठ के यही हमें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे हम कि इनके लिए हम कौन सा कंटेंट कर सकते हैं,
जी
क्योंकि एक वो जो रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर है कि अब जब आप जोक सुना रहे हैं, अगर उस तरीके की बात या वो उस जोन से कोई इंसान नहीं निकला तो वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा, तो उसपे बहुत काम करना पड़ा था, सोचना पड़ा था कि क्या कर सकते हैं। और फिर फाइनली मेरे ख्याल में हमने मैंने जो करा था, मैंने बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ जोक्स ही करे थे, क्योंकि मुझे लगा कि और कुछ लोगों को कनेक्ट करे ना करे, इंडिया में बॉलीवुड तो सबको कनेक्ट करता है, तो मैंने उसी से
जी
रिलेटेड जोक्स फिर करे थे उस शो में। तो वो पर वो काफी चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि एक तो मतलब एनवायरनमेंट ऐसा और प्रेशर जो होता है कि हाँ यहाँ पे इतना मीडिया भी आया हुआ है पर पुलिस वाले भी खड़े हैं और करीबन 1,000-1,500 सजा याफ्ता मुजरिम खड़े हैं, और फिर प्रॉब्लम क्या थी, वो जेल के अंदर था, तो मतलब हमें अगर टॉयलेट भी जाना तो हम सेल्स में गए थे वहां पे, जो प्रॉपर जेल के अंदर जो जहां मुजरिम यूज करते हैं, हमें वहां जाना पड़ा था, तो काफी एक अलग एक्सपीरियंस रहा था वो।
जी तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि कई सारे लोग हैं जो अपनी जॉब कर रहे हैं, दे आर इन अ मेन स्ट्रीम करियर, पर कहीं ना कहीं उनकी कॉलिंग कुछ और है, और या तो वो शुरुआत नहीं कर पाते हैं वहां से निकलने की, या उन्हें लगता है कि वी आर टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है एंड शायद हम अपना मार्क नहीं छोड़ पाएंगे। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आई एम श्योर काफी सारे यंगस्टर्स भी आपको सुन रहे हैं और मिडिल एज पीपल भी आपको सुन रहे हैं जो जिंदगी में उससे ज्यादा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उनको आपकी क्या एक एडवाइस होगी?
देखो, अगर जेन्युइनली पैशन है आपका तो आप टाइम निकाल लोगे, ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहता हूँ कि अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पालना बहुत जरूरी है। ये नहीं कर सकते आप कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, आपकी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, और आपको कि भैया मैं तो ये सब छोड़ के बैठ गया हूँ और से कमाने का कोई ठिकाना नहीं है, और आप कहो कि अब मैं सिर्फ पैशन फॉलो करूंगा, वो आप नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आपका जेन्युइनली पैशन है तो आप वो बैलेंस ढूंढ लोगे जहां पे आप अपनी जॉब या अपनी नौकरी या अपने बिजनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा कर पाओगे। और आज की डेट में तो फायदा ये है कि इंटरनेट है, यूट्यूब है, तो ऐसा भी नहीं कि हर एक चीज करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़े या आपको ढूंढना पड़े, बहुत सारी चीजें आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। चाहे आप देख लीजिए आज की डेट में जो लोग इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, और वो सब वो सिर्फ घर बैठे बैठे भी कर पा रहे हैं, तो आज की डेट में जो ये आर्ग्यूमेंट है ना, वो मुझे लगता है थोड़ा वो उसकी उतनी सेंस नहीं बनती है कि यार अब तो हम घुस गए चीजों में, अब निकलना बड़ा मुश्किल है। ठीक
एक
है।
आखिरी सवाल है, क्योंकि ये सवाल मैंने ऑलमोस्ट कमेडियन से पूछा है, जितनों को भी
हाँ
मैंने
जी,
इंटरव्यू किया है अब तक, और इस
हाँ जी,
दौरान खूब सारे कमेडियंस के साथ बातचीत करने का मौका मिला मुझे। तो सर, ये कॉमेडी का आर्ट फॉर्म है, ये एक स्किल है कि मतलब जिसमें है उसमें है, ये एक इनबॉर्न टैलेंट है, और ये मतलब आप कहीं से सीख नहीं सकते हो, ना आप ये चुरा सकते हो?
ऐसा नहीं है कि जो हर कोई नेचुरली टैलेंटेड है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नेचुरल टैलेंट तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो तो मस्ट है कि हाँ कुछ आपके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर है या देखने जिंदगी देखने का नजरिया है, पर उससे ज्यादा जरूरी है उसके बाद जो परसिस्टेंस चाहिए इस आर्ट फॉर्म को समझने के लिए, कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है जोक, कैसे लिखना है, एंड 10 बार स्टेज पे बॉम्ब होने के बाद भी 11वीं बार चढ़ने वाली वो जो हिम्मत है वो ज्यादा जरूरी है उससे।
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.